आज सभी दिल वालों को स्पेशल सुबह, स्पेशल उनका भाग्य आज अच्छा है ना, सुबह निर्भय भाई मिले है ना। अभी हमारे बीच हमारी दादी जी, दादी रतन मोहिनी जी हैं। दादी जी हमारे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के ज्वाइंट चीफ हैं और साथ साथ जो हमारा युवा प्रभाग है, यूथ विंग है, उसकी चेयरपर्सन है, राजस्थान जोन की भी चेयरपर्सन है। और जो हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ना यहाँ पर, जो जितने भी टीचर्स हमारे सेंटर्स पे होती हैं, उनका ट्रेनिंग का सारा कार्यभार दादी जी की अंदर डायरेक्शन में उनकी लुक आफ्टर होता है। आज सभी दिल वालों का दादी जी ऑपरेशन का डे था, जिन्होंने आज अपना अपना ऑपरेशन कराया सभी ने, सभी ने यहीं पे दादी इनका ऑपरेशन शिव बाबा ने किया सबको। दादी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, हाँ सबके दादी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव दादी सब।
ऑपरेशन का दिन था।
दादी जी को माइक ला के दीजिए। हाँ सबको दादी ऐसा फील हुआ है कि जैसे उनके ऑपरेशन शिव बाबा ने किया है उनका ना। दादी डॉक्टर शारदा दादी डॉक्टर हैं, ये दादी जी अमृतसर से आई हैं, खुद हार्ट की पेशेंट भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो आप अपना अनुभव सुनाएंगे कैसे।
मेरा नाम है डॉक्टर शारदा दलखा, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है अमृतसर में। तो मतलब मैं काफी अच्छी प्रैक्टिस है और डॉक्टर के हिसाब से मेरा टाइप ए बिहेवियर है। आई थिंक उसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं काम भी बहुत करती हूँ और बिहेवियर भी मेरा ऐसा ही है, जल्दी करने वाला। तो 2001 में मैं किसी शादी पे गई रात को, जनवरी के मंथ में, तो वुलंस भी अच्छी तरह नहीं डाले हुए थे, तो मॉर्निंग में मुझे हार्ट अटैक हो गया। तो एकदम मेरी मुझे लगा कि कंस्ट्रिक्शन हो रही है, बिकॉज मैं हॉस्पिटल में रह रही थी इसलिए इमीडिएट इलाज मुझे मिल गया विद इन 2-3 मिनट्स। तो फिर भी स्टेबलाइज नहीं हुआ, तो हम नेक्स्ट शाम तक किसी हॉस्पिटल में गए, तो वहां उन्होंने मेरी जाके सिंगल वेसल ब्लॉक था और एंजियोप्लास्टी कर दी। पर एंजियोप्लास्टी करने के बावजूद भी मैं साल भर ठीक नहीं हुई, मुझे हर महीने ब्रेथलेस का अटैक होता था और ऐसा अटैक होता था गए के गए, बस बिल्कुल मरने वाला एकदम, मेरा पूरी चेस्ट पानी से भर जाती थी, मतलब पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं उसको। फिर मूलचंद हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल जो यहाँ भी आते हैं, उन्होंने मेरे को ठीक किया उसका। 4-5 साल के बाद मैंने ऐसे ही, मुझे थोड़ा सा सैर करते करते ना छाती में कंस्ट्रिक्शन से होती थी, साग उठता था, तो मैंने अपनी एंजियोग्राफी दोबारा कराई इन 2007। तो उसमें मेरा ट्रिपल वेसल डिजीज निकली। डॉक्टर ने बोला इमीडिएट ऑपरेशन कराओ, नहीं तो आपका तो बम फट जाएगा एकदम से, टाइम बम रखा हुआ है।
अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो बम फट जाएगा।
तो मैं अपनी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी लेके ना फोर्टिस हॉस्पिटल चली गई चंडीगढ़ में। वहां किसी वजह से मुझे डॉक्टर रात को उन्होंने बोला अभी दाखिल हो जाओ, सुबह आपका ऑपरेशन होगा। तो मॉर्निंग में डॉक्टर किसी और ऑपरेशन में बिजी था, तो उन्होंने मुझे सारा दिन नहीं मिले, तो मैं उठ के इधर उधर घूमती रही और डॉक्टरों को मिलती रही। तो तभी मैं पहले अपना इलाज डॉक्टर क्लियर है स्कॉट्समन से करा रही थी, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं ऑपरेशन के लिए आई हुई हूँ, तो स्कॉट्समन नहीं मैं आ रही क्योंकि वहां वो पॉलिटिक्स थी कोई, जैसे डॉक्टर वहां से चले गए अपोलो हॉस्पिटल वगैरह में जो सर्जन थे, तो मैंने कहा इसलिए मैं 40s में कराने आई हूँ। तो कहते हैं आपको तकलीफ क्या है, मैं कहा मुझे वैसे तो कोई तकलीफ नहीं, ज्यादा चलने से थोड़ा सा सांस रुकता है। तो उन्होंने बोला फिर क्यों ऑपरेशन करा रहे हो, मैं अमृतसर आ रहा हूँ आप वापस चलो। तो मैं अपनी गाड़ी जा रही थी दिल्ली, तो उधर से वापस मुड़ गई, हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं ली, वैसे चले गए, मैं अपनी फाइल वाइल वहां छोड़ के सारा कुछ, क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर ने देखा नहीं था, कोई एडवांस वगैरह तो जमा कराया नहीं था। तो फिर मैं अमृतसर गई, वहां डॉक्टर मेरे को चेक किया, कहते वैसे ब्लॉक्स तो हैं पर अगर आपको जहाँ तो ऑपरेशन करा लो, पर ऑपरेशन के बाद फिर भी ब्लॉक होंगे, क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें मल्टीपल ब्लॉक्स होते रहते हैं, तो आप अपना डायबिटिक्स कंट्रोल करो, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो घर जाओ। तो ये बात है सितंबर की 2007 की, पर आज तक मैं ठीक हूँ। तो मेरा बेटा इधर डॉक्टर से काफी अटेंड करता रहता है, इधर के सारे प्रोग्राम, ये ब्रह्म कुमारियों के सभी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो उसने मेरे को बोला अगर आपने बचना है तो या तो ऑपरेशन कराओ, तो यहाँ डॉक्टर के ये कोर्स अटेंड करो। तो तब मैं लास्ट टाइम जब हुआ तो मैंने अपने सारे पेपर्स भेजे, मैं इधर आने को तैयार थी, पर 1-2 दिन पहले मुझे डॉक्टर ने बोल दिया आपको रास्ते में अटैक हो जाना, आप मत जाओ। फिर मैं थोड़ा सा डर गई, मेरे बच्चे भी कहने लगे भी अगर ऐसी बात है तो नहीं जाना इस बार। फिर 6 महीने मुझे, फिर मैं सोच रही कि ऑपरेशन कराऊं या कुछ, पर मैंने सोचा ऑपरेशन के बाद भी ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि एंजियोप्लास्टी जब मैंने कराई मेरा सिंगल वेसल ब्लॉक था, तो उसके बाद एक ब्लॉक था, तो उसके बाद मुझे 5 ब्लॉक्स हो गए, मल्टीपल ब्लॉक्स जगह जगह। और उसमें भी जिस वेस्टल में मेरी उन्होंने एंजियोप्लास्टी किया, वहां भी 70% ब्लॉक्स है। इसका मतलब ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। तो मैंने पूरा सोच लिया कि मैंने डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराना है, यहीं आना, जो ये कहेंगे वही करना है। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे 2-3 दिन से मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वहां मेरी डायबिटीज भी इतनी कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारी लाइफ बड़ी फास्ट है, बड़ी टेंशन है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी है जो मैं डॉक्टर के साथ ही डिस्कस करूंगी। तो उस वजह से मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था, 300-400 भी शुगर आ रही थी। वैसे जब से मैं यहाँ हुई, मेरी फास्टिंग भी 110 आ रही है और आफ्टर फूड भी 160-140 इतनी आ रही है। तो मैं काफी खुश हूँ और बिल्कुल लाइट फील कर रही हूँ। यही मेरा एक्सपीरियंस है।
नहीं है केवल विश्वास, और विश्वास और परहेज को पालन करना।
बिल्कुल ठीक, ऐसा पक्का हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। अच्छा एक दिल वाला और आ जाओ कोई भी, है ना, आप आएंगे, आ जाओ आप, आज आप आ जाओ सेकंड लाइन में।
इस देह का नाम योगेंद्र कुमार है और चंडीगढ़ से आया हूं, और अभी अभी ऑपरेशन करवा के उठा हूं, तो थोड़ी वीकनेस ही है, शायद ज्यादा जोर से ना बोला जाए।
कब कराया है ऑपरेशन?
अभी अभी ऑपरेशन बाबा ने किया, सुप्रीम सर्जन ने किया।
सुप्रीम सर्जन ने ऑपरेशन किया।
तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं सिर्फ अपना ऑपरेशन के बारे में ही बताऊंगा, कैसे सुप्रीम सर्जन ने किया,
कैसे शिव बाबा ने किया वो बताएंगे।
तो पहले यहां से इंस्ट्रक्शंस मिली कि अभी आपको बेहोश किया जाएगा, एंथीसिया दिया जाएगा, और आपने अपना कंसेप्ट देके फरिश्ता रूप में ऊपर जाना है बाबा के पास। सुप्रीम सर्जन मिलेंगे वहां और असिस्टेंट सर्जन होंगे ब्रह्मा बाबा, तो वहां आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो उसी तरह से यहां से फरिश्ता रूप के कपड़े पहन के ऊपर गए बाबा के पास, सामने असिस्टेंट सर्जन नजर आए, उनके ऊपर कुछ लाइट चमक रही थी, ऐसे लग रहा था शायद ऑपरेशन के समय ऊपर वो लाइट लगाते हैं शायद। तो बाबा ने पूछा क्या तकलीफ है बच्चे, तो कहा भी आपको तो पता ही है, तो ऑपरेशन हार्ट की तकलीफ है। उन्होंने चेक किया, पूरा चेक करने के बाद बोला कि तुम्हें हार्ट की तकलीफ से पहले कुछ और रूट काज है, उसको निकालना पड़ेगा। वो रूट काज का एक अंदर तुम्हारे पौधा बन गया है बहुत बड़ा, उसको पहले जड़ से निकालना पड़ेगा, तो तब तुम्हारा अपने आप ही आंतड़ियों फ्लो जाना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगी ये चीजें। तो पूछा बाबा से किस चीज की, क्या पौधा क्या है, तो कहने लगे कि ये तुम्हारा एक मान के लिए रोमांच और अपमान का भय, ये चीजें ना पनक पनक के एक जहरीला पौधा बन चुका है, जिसने अंदर नाड़ियों में तुम्हारे खून के फ्लो को जाने से रोक रखा है। तो मैंने बोला बाबा ऑपरेशन कर दो फिर इसका। तो कहने लगे लाओ कॉन्सेप्ट जो तूने लिख के दिया है, कहा गया था कि लिख के लाओ, वो ध्यान में आया, वो तो भूल ही गए, लेके नहीं आए। उसने कहा बच्चे जाओ वापस और दोबारा अपना कंसेप्ट लेके आओ, पूरा भरोसा और ऑपरेशन के लिए दोबारा आओ, फिर ऑपरेशन किया जाएगा। तो धीरे धीरे वापस आ गए, लाइट हो गई, तो दूसरा ऑपरेशन का सत्तर के लिए फिर आवाज आई कि अब दूसरे भाई आपको एंथीसिया देंगे और आपने अपना कंसेप्ट देख लिख के बाबा के पास जाना है और सुप्रीम सर्जन से अपना हार्ट का ऑपरेशन करवा के आना। तो फिर दोबारा जब एंथीसिया देने लगे, सबसे पहले मैंने अपना कंसेप्ट लिखा, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय भरोसा कि आप जो करोगे ठीक करोगे, और पौधा, इस पौधे को जड़ से निकालना है, और इसके बाद कुछ ऐसा जैसे पेट्रोल डाला जाता है पौधे के नीचे ताकि दोबारा जड़ ना पनप सके, कुछ ऐसा ऑपरेशन कर दो बाबा। और इस तरह के संकल्प लेके अपने सफेद वस्त्र धारण करके, फरिश्ता रूप धारण करके ऊपर जाना शुरू हुआ है। फिर अपना सूक्ष्म वतन में पहुंच के फिर सामने असिस्टेंट सर्जन नजर आए, तो उनसे फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने पहले तो मेरे हाथ से पेपर लिया कि हाँ भाई ऑपरेशन होएगा, फिर क्या बाबा शुरू कर दो ऑपरेशन। तो उन्होंने आज तो फरिश्ता स्वरूप से ही ऊपर से किरणें देनी शुरू की, और मुझे नहीं पता नीचे कैसे ऑपरेशन हो रहा है, बॉडी तो नीचे थी, बॉडी तो नीचे है और हम तो ऊपर बैठे हैं। तो धीरे धीरे ऑपरेशन होता गया, महसूस हो रहा था कि नीचे कुछ हो रहा है, किरणें अंदर जा रही हैं। तो थोड़ी देर बाद बाबा ने बोला कि बच्चे ऑपरेशन तुम्हारा हो गया है, और ये पौधा जो है ना एक अक, जैसे अक का पौधा होता है ना जिसमें जहरीला दूध भरा होता है, उस तरह से था, तो इसको हमने निकाल दिया है। और मैंने कहा उसके लिए कुछ और, जैसे मैंने बोला था कोई पेट्रोल नुमा कोई चीज डालना ताकि दोबारा ना पनपे, तो उसके लिए क्या डाला आपने बाबा? तो कह रहे कि बच्चे जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, बाहर से कोई गेस्ट आते हैं उससे उपेक्षा रखते हैं कि कुछ हमारे लिए गिफ्ट लेके आए या कुछ दें, और वो जब देते हैं तो हम लोग मना करते हैं, बाप मना करता है कि नहीं लेना, तो मैं तुम्हारे पे आंख रखूंगा, जब तुम कभी ऐसी एक्सपेक्टेशन करोगे तो तुम जब भी कुछ ऐसा हो तो मैं ऊपर से देख रहा हूं। तो इस तरह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और उन्होंने कहा कि अब अपने आप तुम्हारे नाड़ियों का फ्लो अंदर जाना शुरू हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। तो अब भी संकोच हो रहा था उठ के बोलने में, लेकिन इसलिए बोला कि मेरी तरह के कुछ और भी होंगे जो संकोचवश ये ना बोल पाएं, अपनी बीमारी ना बता पाएं, तो उनको हो सकता है फायदा हो। तो मुझे ऐसा कोई मान या अपमान का कोई अब भय नहीं है। तो थैंक्स करता हूं बाबा का कि उसने सुनी मेरी।
मान की इच्छा, अपमान का भय।
दादी जैसे दादी सबने दादी सबको दादी सबको लिखवाया था सुबह सुबह का दादी सुबह सेशन में सबको लिखवाया था, सबने लगभग 95% ने लिखा कि हमको ऐसा फीलिंग हो रही कि हमारी किडनी जा रही है।
इस ऑपरेशन के लिए थैंक्स पहले सुप्रीम सर्जन का, फिर असिस्टेंट सर्जन का, फिर हमारे एंथीसिया भाइयों का और दो नर्सेज का, और उनसे भी ज्यादा जो हमारे बाहर बैठे हुए अटेंडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की कि इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो।
बहुत
ओम शांति।
देखो दादी जी हमारी 84 इयर्स की है ना, पर एकदम यंग है ना, 84 इयर्स यंग, ओल्ड नहीं। तो दादी हमारी यंग दादी जी है ना, सदा एक्टिव, इतनी ज्यादा सेवा करती है फिर भी सदा अलर्ट एक्टिव रहती है सबसे। हाँ आप भी यंग हो गए ना, सभी यंग। दादी अभी परसों ही पैदा हुए ना, परसों ही दादी पैदा हुए, सभी परसों दादी इनका बर्थडे मनाया था, तो परसों सब पैदा हुए, अभी दो दिन के हैं सभी।
ओम शांति। कहा जाता है वह ऐसा ही मानना है, परमात्मा हम सबसे न्यारा है, न्यारा है ना, है न्यारा, और हम क्या है? अगर मेरा बाप सबसे न्यारा है तो मैं सबसे न्यारी या सभी जैसी या सबकी प्यारी, क्या कहेंगे? हाँ, सबकी प्यारी, सब में कौन कौन आएगा? अगर हम कहें सबके प्यारी के बदले बाप की प्यारी कहें तो कौन सा अच्छा रहेगा? बाप के लिए गाया जाता है वो सबसे न्यारा और सर्व का प्यारा है, सभी उनको याद करते हैं, कोई जानते हैं नहीं जानते हैं, पर भगवान को प्यार जरूर करते हैं, याद करते हैं कोई भी रीति से। देखो जब आपत्काल है कोई भी दुख आएगा याद करेंगे ना, अर्थात वो दुख का हरता है, तब तो याद करते हैं ना। और देखो याद करने से ऐसी फीलिंग आती है ना, कि हमें दुख से रिलीफ मिली, तो बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा, और हमें सबसे न्यारा बाप का प्यारा बनना है। हम बाप के प्यारे बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सर्व के प्यारे बने ही रहेंगे, पर मैं ये इच्छा न रखूं कि मुझे सर्व का प्यारा बनना है। अगर मैं बाप की प्यारी हूं तो बाप मुझे अपने साथ सदा रखेगा। जब सर्व बाप को प्यार करते हैं तो मैं बाप के साथ हूं तो सब प्यार करेंगे। क्यों? बाप के साथ हूं तो जैसा बाप वैसे बच्चे। हमारी नजर बाप के पर रहेंगी, हमारी बुद्धि में बाप की श्रीमत याद रहेंगी, बाप की हर शिक्षा हमें पल पल पे याद आती रहेंगी, और उन शिक्षाओं के अनुकूल मैं स्वयं को चलाती रहेंगी, तो मेरे अंदर बाप जैसी क्वालिफिकेशंस इमर्ज होती जाएंगी, और सदा बाप के साथ होने के कारण बाप की शक्ति हमें मिलती रहेंगी, जिससे बाप सर्वशक्तिवान सर्व का सुखदाता, तो बाप हमें भी मास्टर शक्तिवान सर्व को सुख देने वाले बना देंगे। क्योंकि बाप मेरा सुखदाता है तो सुखदाता बाप के बच्चे, क्योंकि मैं बाप के साथ हूं, सदा बाप के शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके अमल करती रहती हूं, क्योंकि मेरा बाप से बहुत प्यार है। तो सर्व बातों की मूल बात मेरे अंदर सदा सदा शब्द सदा हमें याद रहे कि सदा हमें अपने मन के अंदर बाप की याद बनी रहे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत याद रहे, बाप के श्रीमत के अनुकूल हम हर कदम अर्थात हर कर्म, कदम स्थूल नहीं, जीवन का कदम कर्म माना जाता है, कर्म में देखना सुनना बोलना करना ये सब बातें आ जाती हैं, बल्कि सोचना और समझना ये सब कुछ हमारा बाप के श्रीमत के अनुकूल हो, अर्थात सहज भाषा में कहा जाता है बाप के शिक्षाओं के अनुकूल हो। तो सदा हमें बाप से मिली हुई शिक्षाएं याद रहे, क्योंकि शिक्षाएं याद रहने से हम ये महसूस करेंगे, जैसे ये भ्राता जी बता रहे थे, मुझे महसूस हो रहा है बाबा मेरे सामने है, बाबा ऐसे ऐसे कह रहे हैं और मैं उसको इस प्रकार से पालन करता जाता हूँ। तो ये फीलिंग किसको आती है, किसको आएंगी, किसको? जो अंदर सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा ही हमें याद रहे मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा चेतन है, शरीर चेतन नहीं है, ये तो प्रूव है ना, शरीर जड़ है या चेतन है? हाँ? काम तो सब शरीर करता है, फिर जड़ जड़ कैसे हुआ?
आत्मा है तो शरीर चैतन्य है, क्योंकि आत्मा शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा कराती है। इसलिए आत्मा को न जानने के कारण हम समझते हैं मैं जो मेरे शरीर का नाम है, उसी रीति से संबोधित करते हुए स्वयं को वही नाम और ये रूप मानती हूँ। परंतु इस नाम रूप को देखते हुए अंदर बुद्धि के अंदर हमारी यह स्मृति जागृत रहे, अर्थात सदा यह स्मृति रहे, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति अविनाशी आत्मा हूँ मैं, अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा पिता की संतान, अति सूक्ष्म रूप से, क्योंकि बुद्धि भी सूक्ष्म है, आत्मा को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, आप बुद्धि के इंस्ट्रूमेंट को भी आंखों से नहीं देख सकेंगे, देखेंगे कितना भी महीन इंस्ट्रूमेंट ले आओ तो भी बुद्धि जो अंदर काम करती है दिखाई पड़ेगा। तो ये मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म मुझ चैतन्य आत्मा की ये चैतन्य शक्तियां हैं, जिसके द्वारा संकल्प, सोच, समझ, स्मृति काम करती है, जो सोच समझ फिर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं, ऐसी जानकारी मुझ आत्मा को अंदर पक्की हो और उस जानकारी को जानते हुए, अर्थात यह सारी जानकारी मुझ आत्मा में है, मैं आत्मा ही जानती हूँ यह शरीर किस प्रकार से काम करता है और मुझे इन कर्म इंद्रियों से क्या काम कराना है। जो पिता का कहना है बच्चे सदा सबको सुख दो तो तुम सदा सुखी रहेंगे, न किसको दुख दो न किससे दुख लो। दुख लेना, कोई दुख देता नहीं है, हम समझते हैं इसने ऐसे बोला इसलिए मुझे दुख हुआ, ये न बोलता ऐसे बोल तो मैं दुखी नहीं होता, परंतु बोलने वाले ने बोला, स्वीकार किसने किया, किसने स्वीकार किया, किसने किया बोलो। दुख मुझे तब हुआ जब मैंने उनके बोल को स्वीकार किया। अगर मैं बोल सुनते हुए स्वीकार न करूं तो मैं दुखी होंगी, होंगी। तो दुख मुझे कोई देता नहीं है, मैं खुद लेता हूं। ये समझ मेरे को तब आती है जब मैं अविनाशी आत्मा, अविनाशी आत्मा के अंदर यह ज्ञान, ज्ञान अर्थात सच्ची समझ, यथार्थ समझ। देखो आम रीति से आप लोग भी जानते हैं सच क्या है झूठ क्या है, हम जानते हैं, मानते हैं, मानते हैं झूठ न बोलना चाहिए फिर भी बोल देते हैं, क्योंकि कहेंगे कारण आज की दुनिया ही ऐसी है, आज के दुनिया में सच बोलने से चल ही नहीं सकता है, ये बोलने वाला कौन, कौन, क्या सत्य पिता परमात्मा की संतान आत्मा, आत्मा सत्य है अविनाशी है। वो अगर मैं अपने को आत्मा मानती हूँ तो मेरी सच्ची समझ काम करेंगी और इन कर्म इंद्रियों के द्वारा जो यथारथ है वो ही काम कराएंगी। अगर अयथारथ काम होता है, माना मैं अपने आप को भूली हुई हूँ, मानते हुए भी वो जानकारी यथारथ मैंने अपने अंदर में नहीं रखी है, कहती हूँ मैं जानती हूँ मैं आत्मा हूँ, आत्मा अविनाशी है, आत्मा सत्य है, आत्मा में सत्यता की शक्ति, आत्मा में हर कर्म की सत्यता की समझ, जिसको ज्ञान अर्थात सही समझ, सच्ची समझ, सच्ची समझ आत्मा में है। इसलिए परमात्मा पिता हम बच्चों को इस स्वयं के सच्चे स्वरूप की आकर पहचान देते हैं। और वो पहचान क्योंकि हम भारतवासी आत्मा को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं, इतना भी जानते हैं कि उन्हीं के सिवाय, परमात्मा के सिवाय ये संसार दिखाई नहीं पड़ता, उनकी ही रचना है, आत्मा के सिवाय ये शरीर काम नहीं करता, ये भी हम मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, मानते हुए कहें ऐसा जानते हुए भी स्वयं को हर समय जो कुछ दिखाई पड़ता है वो ही मान करके वो ही करते हैं। इसलिए जो संसार दिखाई पड़ता है उन्हों से जैसे वो करते हैं हम उसको ऐसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि अपनी सच्ची समझ छिप गई, हम अपने को आत्मा हूँ ये भुला बैठे, समझते हुए भी भुला बैठे। बाप हमें स्मृति दिलाते हैं, हे आत्मा, जब हमने बाप को देखा नहीं परमात्मा को, पूछो अपने आप से हम क्यों मानते हैं भगवान को जब देखा नहीं है। आगे कई लोग हमारे से प्रश्न करते थे और आप जानते हैं आगे साइंटिस्ट आत्मा को नहीं मानते थे, भले उन्होंने कई प्रकार से जानने की कोशिश की, उन्हों को मिला नहीं, फिर भी प्रत्यक्ष रूप में वो मानते नहीं थे, परंतु आज हर एक मानता है। आगे माना जाता था विज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, विदेश में भगवान को कोई नहीं मानता है, परंतु आज हम लोगों का अनुभव है, सुनाऊंगा ना, ये हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विदेश के भी कई देशों में है, 120 देशों में, तो 130 देशों में, तो सब प्रकार के लोग हैं, मुसलमान भी है, अरब भी है, चाहे माना आज के दुनिया में जिनों को जिस भाषा में कहा जाता है, सभी मानते हैं परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान, क्योंकि परमात्मा जब स्वयं हमें बैठ करके स्वयं की पहचान देते हैं। बाप हमेशा बच्चों को कितनी भी पुरानी बात हो, कितनी भी नई समझ में आवे, परंतु बुजुर्ग बाप अपने छोटे बच्चों को तो सरल भाषा में समझाएगा ना, ये तो दुनिया में भी कहा, आप लोग तो अनुभवी है ना, सब बुजुर्ग बैठे हैं। इसी प्रकार से बड़े ते बड़ा बाप सर्व आत्माओं का पिता, हम आत्माओं को जो हम अपने आप को भूल गई है, परंतु भारतवासी के नाते मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं, उस मान्यता का फायदा हमें कि भगवान स्वयं इसी भारत में साधारण मनुष्य रूप में ही आते हैं, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसके अंदर सोचना, समझना, करना, ये सारी उसके अंदर शक्ति है। करते तो जानवर भी है, समझ उनमें भी है, परंतु उनकी हद की समझ थोड़े अंदाज में। नहीं तो नहीं कहते हैं, कहीं कुत्ते कितने समझदार होते हैं, कितने मालिक के वफादार रहते हैं, जो आज मनुष्य भी ऐसा वफादार नहीं है, कहा जाता है ना ऐसा, परंतु उनकी समझ लिमिटेड है। मैं आत्मा जो बेहद के बाद जो सर्व का पिता है, विश्व का पिता है, उसकी संतान होने के नाते मैं भी इतनी अविनाशी सत्य होने के कारण हमें वो समझ बाप ने दी है, जो हम सत्यता को समझ करके सत्यता को जीवन में धारण कर सकते हैं और दूसरों को भी सत्य राह पर चला सकते हैं। क्यों? परमात्मा पिता जो सर्व का पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु सदगति दाता, परमात्मा के सिवा कोई भी मनुष्य आत्मा की गति सदगति नहीं कर सकते। और ये भी आप समझेंगे कि इस सृष्टि के अंदर मनुष्य योनि ही है सर्व योनियों में श्रेष्ठ है, जितनी भी योनि है। इसलिए परमात्मा साधारण मनुष्य तन में आती है। देखो गीता में भगवान के महावाक्य है, मैं साधारण तन में और गुप्त रूप में आता हूँ। भले लोग भक्ति मार्ग में मानते हैं सर्वव्यापी है, इसका तो सहज सहज उदाहरण है। अगर भगवान सर्वव्यापी भी है, आप में भी है, मेरे में भी है, तो मैं पाप कर्म क्यों करता हूँ? मैं भगवान सुखदाता दुख क्यों देता हूँ? ये प्रमाण है कि भगवान मेरे में नहीं है, वो एक है। भगवान को याद करना जरूरी है। क्यों? वो हमारे को सुमत देते हैं। गीत है ना, एक सुमत भक्ति मार्ग में गाते हैं, सुमत दे भगवान। इसलिए ज्ञान का विस्तार बहुत है। सार यही है, हमें स्वयं को यह समझना है। भले मान्यता है भारत में भगवान कच्छ अवतार भी लेता है, मत्स्य अवतार भी लेता है, वारह अवतार भी लेता है, किस लिए? क्या कच्छ अवतार लेकर के कच्छ योनि का उद्धार करेगा? अगर उसका उद्धार हुआ तो मनुष्य उस बात को मानेंगे? ये तो केवल दलील करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि बात समझ में आवे। लेकिन भगवान ने अपने अवतार के लिए क्या बोला है? अवतरण उसका इस सृष्टि पर जहाँ हम पाठ बजा रहे हैं, क्योंकि हमें ही मनुष्य आत्माओं को ही फिर से यथार्थ पहचान देकर मनुष्य योनि में ही वह समझ, आत्मा में सच्ची समझ होने के कारण जल्दी इस बात को समझ पाते। इसलिए परमात्मा मनुष्य शरीर का आधार लेकर के और अपनी सच्ची बात हमें समझाता है। जब बाप बैठ के समझाते हैं तो बरोबर आत्मा की वो जागृति आती है, बरोबर प्रमाण है। जब आत्मा प्रकाश इस शरीर से निकल जाता है, जिसको ये आंखें नहीं देख सकती, भगवान को भी ये आंखें नहीं देख सकती है, परंतु जब मुझ आत्मा का मन शुद्ध है, वह शुद्धता की शक्ति जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र, सच्ची समझ रूपी नेत्र, उस सर्वशक्तिवान बाप को देख सकता है, और यही बात हमें याद रखनी है, अभ्यास में लानी है। इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य शक्ति जो प्रकाश रूप हूँ, पर अति सूक्ष्म हूँ। सूक्ष्म वस्तु बड़ी शक्तिशाली होती है, जिसका प्रमाण तो आज बहुत है साइंस का और इन टेक्नोलॉजी में, आप भी जानते हैं। हम इतनी सूक्ष्म है जो दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु शरीर से काम कराती है। तो मैं आत्मा शरीर को धारण करने वाली स्वयं को पहचान, अपने पिता से अपने मन बुद्धि का संबंध जोड़े, सदा हमारे बुद्धि के अंदर बाप की स्मृति जागृत रहे और मन के अंदर वह प्रभु के श्रेष्ठ शिक्षाओं प्रमाण सदा श्रेष्ठ संकल्प चलता रहे, जिसके आधार पर मेरे से कोई पाप कर्म बुरा कर्म न हो, जिस कर्म का विकर्म का खाता बने, जो विकर्म अर्थात पाप कर्म मुझे जीवन में दुख देने योग्य बने। अपन को दुख से बचाने का यही सहज रास्ता, मैं स्वयं को सदा श्रीमत के अनुकूल, शिव बाबा की शिक्षाओं के अनुकूल हम अपन को चलाते रहे। थोड़ा सा आज के दुनिया में उसमें थोड़ी अपनी दृढ़ता रखनी पड़ती है। कहा जाता है दृढ़ता की वो शक्ति है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो हमें अपने अंदर इस बात की दृढ़ता जागृत रखनी है। शरीर को धारण करने वाली, शरीर के द्वारा इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाली मैं चैतन्य सत्य स्वरूप आत्मा, सत्य पिता परमात्मा की संतान हूँ। इसलिए मुझे सत्य पिता के शिक्षाओं पर सदा स्वयं को चलाना है। इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराने हैं, क्योंकि परमात्मा पिता ने हमें कर्मों के गति का ज्ञान भी बहुत विस्तार से बताया। हरे के कर्म, कर्म देखने में एक जैसा होगा, परंतु उनकी वृत्ति, उनकी दृष्टि, उनकी भावना, वो सब कर्मों में सम्मिलित होती है। उस अनुसार कर्म का खाता बनता है, उन खाते के अनुसार मुझे जीवन में सुख दुख समझ सोच सब उसके अनुकूल चलता है, जिसको संस्कार कहा जाता है। तो अभी बाप हमारे संस्कारों का परिवर्तन करके हमारे में दैवी संस्कार, जो हमारे पूज्य देवताओं के थे, फिर से वो हमारे में जागृत कर रहे हैं। जब हमारे वे संस्कार जागृत होते हैं, वे इसलिए कर रहे हैं, अब फिर से इसी भारत में वही देवताओं की दुनिया, वही स्वर्ग का राज इस दुनिया में आने वाला है। वही श्री लक्ष्मी नारायण जो इतना समय पहले राज करते थे, तो स्वर्ग भूमि कहलाया जाता था। हमारा ये भारत स्वर्ग भूमि था, धन्य धान्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा शाहूकार, धर्म का उपकार था। ऐसा हमारा भारत फिर से परमपिता परमात्मा इसी भारत में अब गुप्त रूप से ये अपना कार्य शुरू कर चुका है। आप बड़े भाग्यवान हैं जो आकर के भगवान के स्थापन किए हुए इस अविनाशी यज्ञ में पहुंचे हो, जो यज्ञ परमात्मा ने फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए स्थापन कराया है। इसलिए जो भी बातें आप सुन रहे हैं, दिल को अच्छी लगती है, मन करता है ऐसी ही बातें सुनते रहें, लेकिन बाप कहते हैं बच्चे जितना सुना जितना समझ में आया पहले उसको अपने जीवन के कर्मों में लाओ, जीवन की धारणा बनाओ, तो धारणा युक्त जीवन सदा ही धर्मनिष्ठ बन करके, धर्मनिष्ठ कर्म करने से पाप कर्मों से बचे रहेंगे और पुण्य का खाता हमारा जमा होता जाएगा, जिससे पुण्य कर्मों के आधार से हम बाप के साथ फिर से बाप के उस ऊंचे ते ऊंचे घर परम धाम में जाकर फिर बाप हमें उस स्वर्ग की दुनिया में भेजेंगे। ये आगे चल करके इन बातों का आप स्वयं भी अनुभव करेंगे, लेकिन उसके पहले शिक्षाओं को मानना समझना और दृढ़ता पूर्वक विश्वास पूर्वक उनको अपने जीवन के कर्मों में लाना। इन्हीं शुभ भावनाओं से हमें तो बड़ी खुशी है, जिन्होंने भी अनुभव सुनाया और आप सब जो आए हैं, जरूर है इन बातों का अनुभव कुछ किया होगा, कुछ करते करेंगे, और अपने साथ जो जो आपको अभ्यास कराया जाता है वो अभ्यास जो किया उसको सारा दिन जो भी बीच में टाइम मिलता है उसमें वो अभ्यास चलता रहे, चलते फिरते, क्योंकि यहाँ और तो कुछ काम नहीं है ना, अपना धंधा अपना कामकाज तो याद नहीं है ना, अगर याद करेंगे तो फायदा, वो समय वेस्ट जाएगा। तो हम चाहते हैं आपका समय सेकंड सेकंड सफला हो, जब समय निकाल के आए हो तो समय का पूरा फायदा लेकर के इतनी ऊंची कमाई करके जाओ जो सदा स्वयं के साथ हो, और यह आत्मा अपने परमात्मा पिता को पहचान, उनसे संबंध जोड़, स्वयं को इतना शुद्ध बना दे, जो शुद्धता की शक्ति पवित्रता की शक्ति जो देवताएं चैतन्य में अभी न होते भी उनकी मूर्तियां मनुष्य को आकर्षित करती है, तो जब हम चैतन्य में है हमारे अंदर वो पवित्रता की शक्ति जागृत होंगी, तो सोचो आप क्या नहीं कर सकती है। वही हमारी पवित्रता की शक्ति इसी भारत से अधर्म का विनाश और सत धर्म के स्थापना का दर्शे, अगर हम यथारत रीति से चलते रहेंगे तो हम स्वयं अब बुद्धि के द्वारा अनुभव करेंगे, और जब वो प्रत्यक्ष रूप होगा तो इन आँखों से भी देख सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ जब आप अभी दो तीन दिन के अंदर इतना अच्छा अनुभव करते रहते हैं तो सब बातों को अच्छी रीत से समझ अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते जो आपको दिनचर्या मिले, जो उसके अंदर हमें अपने आप की चेकिंग रखनी है, अपने से बातें करनी है, परमात्मा पिता का प्यार प्राप्त करना है और उससे हमें अपना प्यार ऐसा जुटा देना है जो बुद्धि के अंदर और किसकी भी याद न रहे, केवल शरीर से जिन जिन के साथ अपना पाठ बजाना है, पाठ बजाते हुए न्यारे रह प्रभु के प्यारे बनकर चले। ओम शांति शांति शांति।
सबको पावरफुल डोज दी है ना, तो हम सभी उस डोज को रोज रिवाइज करते रहेंगे, ऐसा दिल वाले सभी संकल्प करते हैं ना। हाँ, सभी अपने आप को एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बनाएंगे राजयोग से। और
सदा अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ बना दो। हाँ। आता है मुस्कुराता हुआ चेहरा?
सभी दादी
बनाओ अपना सभी मुस्कुराता हुआ चेहरा।
सभी मुस्कुराओ,
सबके चेहरे मुस्कुराए और एक दो को देखो मुस्कुराता हुआ। एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ,
खड़े होकर देखो एक दूसरे को मुस्कुरा के देखो,
एक दो को देखो आगे पीछे
मुस्कुरा के देखो एक दूसरे को। हाँ,
देखो अच्छा लगता है ना, खुशी होती है मुस्कुराने से। फिर खुशी में क्या बोलते हैं, खुशी में 32 दान बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा जब एक दो को खुशी में देखेंगे तो सब दुख दर्द भूल जाएगा और मिट जाएगा, बैठ जाएगा।
बहुत अच्छा, दादी जी ने सबको खुश कर दिया, मुस्कुराना सिखा दिया है ना।
इसलिए बाबा हमें कहते हैं खुश नसीब बच्चे, सदा हम याद रखें कि हम बाबा के परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे भगवान के खुश नसीब बच्चे हैं, बड़े भाग्यवान हैं जो भगवान भाग्य विधाता भगवान स्वयं हमारा भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है।
एक मिनट साइलेंस करेंगे तो सभी दिल वालों की तरफ से दादी जी को बहुत 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 थैंक्स कि दादी ने हमें इतना बिजी होते हुए भी हमको इतना समय दिया। दादी जी बहुत बिजी थे, माउंट आबू में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो दादी जी आज हमारे बीच आए। दादी जी का बहुत सभी दिल वालों की तरफ से फिर दोबारा
तो मानते हैं शुक्रिया हम बाप का ही सदा अदा करते रहे। हम लोग तो आपस में एक दो में मिलते, मिले हुए बाप के खजाने को आदान प्रदान करते जाएं, यही हमारी जीवन है और यही बाबा ने हम बच्चों को सेवा दी है। इसलिए मैं तो कहेंगी शुक्रिया आप सबका, जो हम आप सबसे बाप के ऐसे भाग्यवान बच्चे आए और उनसे हमें गुप्ता जी ने मिलने का मौका दिया। इसलिए शुक्रिया तो गुप्ता जी और आप सबका हमें कहना चाहिए, हमने तो कोई विशेष बात नहीं की।
ऐसे बड़ों की ऐसे बड़ा बड़ा गुण है ना, बड़प्पन का सही गुण ये है, ऐसे हमको भी बनना है ना, इतना इतना नम्रता इतनी सरलता हमारे अंदर भी होनी चाहिए। सीखना है हमें बड़ों से, यही सीखना है कितनी नम्रता कितनी सरलता, यही हमको जीवन में धारण करना है। अगर ऐसा करें तो कभी हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। एक मिनट चलो साइलेंस कर। I'm not afraid of the dark.